آپ ہوئے مر گئے دنیا. تو آج کی کلاس کا ٹاپک ارتھات یعنی ہم مر جائیں تو دنیا بھی ہمارے لیے مر جاتی ہے. کون سا لگنا کس مرتیو کیا ورنن بابا کر رہے ہیں, کون سا مرن براہمنوں کو دوج کہا جاتا ہے جن کا نو جنم ہوا ہے, اور جب نیا جنم ہوتا ہے تو پرانا سب کچھ سماپت. وردھمان مہاویر جین دھرم کے سنستھاپک, ان کے جیون میں ورنن ہے کہ ان کو تیور ویراگ ہوا. انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے سنیاس لینا ہے. ماں نے کہا بالکل نہیں, جب تک میں جیوت ہوں تم کہیں نہیں جا سکتے. انہوں نے ترنت مان بھی لیا اور نہیں گئے تب تک جب تک ماں دیہ میں تھی. ایک دن ماں نے شریر چھوڑ دیا اور وہ تیار ہو گئے سنسار چھوڑ کر جانے کے لیے, پرنتو ان کے بھیا اور بھابھی نے کہا تم کیسے کیسے جا سکتے ہو, ہم لوگ ہیں, ہماری سیوا تم کو کرنی پڑے گی یا اس گھر میں تم کو رہنا پڑے گا. تب بھی انہوں نے کوئی ویروھ نہیں کیا, پرنتو اس کے بعد وہ اس گھر میں ایسے رہنے لگے جیسے وہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ مردہ لاش, جیسے ایک لاش. کسی بات کا کوئی پربھاؤ نہیں, بس بیٹھے ہیں دھیان مگن, جو کہنے کو کہا وہ کیا اور چھوڑ دیا. ان کے بھیا اور بھابھی اتنے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اس سے تو اچھا ہوتا تم یہاں سے چلے جاؤ, جو تم کو چاہیے. اور وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ جو ان کا جیون تھا ماں کی مرتیو کے بعد کا, وہ ایسا تھا جیسے وہ سنسار میں ہے, گھوم رہے ہیں کر رہے ہیں سب کچھ پرنتو جیسے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جیون ہے مرتیو, ڈائنگ الائیو, جیتے جی مر جانا, اس کی آج ہم تھوڑی سی چرچا کریں گے. مرو گے جو کہ مرو, یہ مرن ہے بیٹا. گورکھناتھ نے کہیں کہا ہے مرو ہچو گی مرو, یہ مرن ہے میٹھا. کس مرن کی بات کی ہے؟ نو جنم ملا ہے تو پرانا سب کچھ مٹ جائے, پرانا کچھ بھی نہ رہے. تو ایسے ہم لگ بھگ یا زیادہ بھی دس باتیں دیکھیں گے جن سے ہمیں مر جانا ہے, کیونکہ جب تک ہم نہیں مرتے نو جنم نہیں ہو سکتا. اپنے ہی گرو سے سوئم کو جنم لینا. مراٹھی کا ایک سنت کہتا ہے مت جی میت ویالو آپولی یا بوٹی آلو, میرے ہی گرو سے میں نے جنم لیا ہے, یہ ایشوریہ پریم میں ایشوریہ نیا جنم ہے. کچھ दिन पहले मुरली में प्रश्न था, बाप तुम्हें कौन सी वार्निंग देते हैं? बाप तुम्हें वार्निंग देते हैं कि अपने ईश्वरीय जन्म को न भूलो, अपने ईश्वरीय बचपन को न भूलो। तो जब नया जन्म मिला है तो नए जन्म में, नए जीवन में, नए दिन में, नई सुबह में सब कुछ नया चाहिए। उन सभी चीजों से मर जाना जो पहले थी, ऐसा नहीं कि जो पहले भी थी और अब भी है, केवल वस्त्र बदले हैं और बैच बदला है। एक व्यक्ति अतिशय क्रोधी था, इतना भयंकर क्रोधी था कि गांव में सभी से लड़ता था। और एक दिन क्रोध में आकर उसने अपनी पत्नी को इतना मारा और फिर कुएं में डाल दिया और वो मर गई। तब उसे एहसास हुआ मेरा क्रोध कितना अधिक है, पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप हुआ। और फिर सुना गांव में कुछ सन्यासियों का संगठन आया है, कुछ साधु आए हैं। सीधा उनके पास गया और रोने लगा और उसको उनको कहा कि मुझे इस संसार से वैराग आ गया है, इतना मैंने क्रोध किया, इतना पाप किया, कैसा मेरा ये पापी जीवन है, मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। वो साधु के महंत उससे कहते हैं, ये संसार दुख है, तुम इस संसार में रहो ही नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, सन्यासी बन जाओ। वो तुरंत हां कह देता है और सन्यासी बन जाता है, सब कुछ छोड़कर उन साधुओं के साथ निकल पड़ता है। परंतु यहां और अद्भुत घटना घटती है, उसका वैराग इतना तीव्र होता है जैसे उधर क्रोध तीव्र था, अब वैराग तीव्र है। बाकी सब सीधे रास्ते से चलते हैं, वो नीचे से कांटों वाले रास्ते से चलते हैं। बाकी सब दो बार भोजन करते हैं, वो एक बार भोजन करता है और धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो महान संत के रूप में गाया जाता है। धीरे धीरे वो जगह जगह जाकर ज्ञान लोगों को सुनाने लगता है। और एक दिन जब वो कहीं प्रवचन कर रहा होता है तो उसका एक बहुत पुराना मित्र उस गांव का वहां आता है और वो अपने मित्र को देखता है और कहता है, अरे ये तो वही है, और ये जो साधु बना बैठा था वो अपना नाम अब रख देता है शांतिनाथ, मुनि शांतिनाथ। तो ये मित्र देखता है, ये तो मेरा वही मित्र है जो इतना क्रोध करता था, पर देखता है ये तो चेहरा ही बदल गया है, जरा देखो तो सही कि वही आदमी है या दूसरा है। उसके पास जाता है और कहता है कि मैं यही हूं। तो मुनि शांतिनाथ तो उसको पहचानने से भी इंकार कर देता है, क्योंकि अध्यात्म में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो प्राय यह दिखाता है कि अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, मैं उनको जानता तक नहीं। तो वो मित्र उससे पूछता है, आपका नाम क्या है? तो वो व्यक्ति कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मेरे बारे में? मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। यहां वहां की बातें होती है। फिर से वो मित्र पूछता है, मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम बताइए। वो कहता है, अभी अभी तो बताया नाम, कि अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। यहां वहां की बातें होती है। फिर से मित्र पूछता है, मैं आपका नाम भूल गया, कृपया आपका नाम तो बताओ। तो वो मुनि तब तक अपना डंडा हाथ में ले लेता है, इतनी बार तो बताया कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ, और कितनी बार बताओ? वो मित्र कहता है, हां आदमी वही है, वही है, कपड़े बदले हैं बस, वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पहले उधर क्रोध था, अब अध्यात्म में क्रोध है। अब शास्त्र हाथ में लिए हुए लोगों को ज्ञान समझाने का नशा है कि सुनो मैं जो सुनाता हूं वही सही है। पहले क्रोध की दिशा अलग थी, अब क्रोध ने केवल दिशा बदली है, तो वही संन्यास ले लिया, संसार छोड़ दिया, वैराग धारण कर लिया, परंतु क्रोध जस का तस वही बैठा है। क्या ऐसा ही वैराग संन्यास समर्पण हमारा तो नहीं? जो संस्कार पहले थे, जो बातें थी, वो भी रूठना, रूसना, नाराज होना, सेंसिटिव नेचर, इंग्लिश में कहते HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया कि खत्म, फीलिंग देवी कोई है इसमें से? एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो दो दिन नाराज, बात ही नहीं करना है। किसी ने कह दिया ये बात ऐसी नहीं कही जाती, ऐसी कही जाती, बस वो शत्रु बन गया। नवजन्म है तो सब कुछ नवीन चाहिए। उन सभी बातों को हमको छोड़ देना है जो अब हमारे काम की नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले और वो वहां मेडिकल कॉलेज में बैठ के ये पढ़े कि सड़क कैसे बनाई जाए, तो क्या कहेंगे इसको? वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। तुम वही पढ़ो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके कोई सोचे कि मैं राजनीति में क्या हुआ था 100 वर्ष पहले, उसका अध्ययन करता हूं, तो क्या ये बुद्धिमानी है? इस ईश्वरीय जीवन में वो सारी चीजें जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं, जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, परचिंतन, परदर्शन, संसारिक बातें, संसार की राजनीति, संसार के दाव पेच, व्यर्थ निगेटिव मीडिया, उनसे हमको क्या? किन बातों से मरना है? सबसे पहली पुरानी देह, पुरानी देह। अपनी भी देह पुरानी है तो दूसरों की भी देह पुरानी है। क्या है इसमें? मलमूत्र से भरा यह देह, कहां से इसमें सौंदर्य? विदेश में ग्रीक लिटरेचर में नार्सिसिस नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी ही परछाई पर मोहित हो गया। किनारे पर बैठा था एक तालाब के, देखा मैं कितना सुंदर हूं, और अपनी ही परछाई पर मोहित हो गया, अपने ही प्रेम में पड़ गया। यदि पानी में कुछ गिर जाता तो रुकता जब तक पानी स्थिर न हो जाए, और देखते रहता कितना मैं सुंदर हूं। सेल्फ लव, अपनी ही देह का प्यार, दिन रात खुद ही को निहारते रहता। और एक दिन वही उसकी मृत्यु हो गई। नार्सिसिस, उसी पर एक झाड़ बना है नार्सिसिस, जिसे नरगिस का झाड़ कहा जाता है। वो पानी के किनारे होता है, झुका हुआ होता है और पानी को देखते रहता है, उसी की याद में ऐसा कहा जाता है। सबसे पहला मरण, मृत्यु, वैराग जो है वो है देह का। ये देह ही सबसे ज्यादा खींचता है। एक मुरली में प्रश्न था, आत्मा को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है? उत्तर था देह। पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, जैसे वो गीला नारियल, देखा गीला नारियल, उसके अंदर का वो चिपका हुआ होता है खोपरा, उसका वो जो कर्नल जिसको कहते हैं, आत्मिक अवस्था की एक परिभाषा है सूखा नारियल, जो कि ऐसे से दिखता है, वो अलग निरंतर चलते फिरते ये अनुभव कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। गीला नारियल अवस्था है आत्मा की निम्नतम अवस्था, जहां तदात्म्य है देह का और आत्मा का इतना अधिक कि अलग हो ही नहीं पा रहे देह से। अवस्था है सूखा नारियल, ऐसे ऐसे करो तो हिलना चाहिए, ये आत्मा ये देह। तो सबसे पहला जो मरण है वो है इस देह से। कैसे डरा जाएगा इस देह से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, गीता के वचन है। हे अर्जुन, साक्षी होकर देख, जन्म को देख, मृत्यु को देख, जरा को देख और व्याधि को देख। देखो इस देह को, बूढ़ा व्यक्ति, कहां है सौंदर्य? सुन नहीं पाता, दांत नहीं है, देख नहीं पाता, झुक जाता है, टिक टिक के पकड़ पकड़ के चलता है। यह है जीवन। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति किसी सड़क के किनारे पर भीख मांगते रहता है। एक युवक रोज उसे देखता है, वो इतना गरीब है और उसके दांत गिर गए हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, आंखों से कुछ ढंग से दिखता नहीं है, हटेहाल है, व्याधि हो गई है, दुर्गंध पैर से निकल रही है, चोट लगी हुई है, घाव है बड़ा। ऐसी दयनीय अवस्था में एक युवक रोज उसे देखता है और उसको आश्चर्य लगता है, कैसा व्यक्ति है, जीवन के प्रति कैसी जीवेशना, कितनी आसक्ति है, इससे तो मरण अच्छा है। एक दिन वो युवक उस व्यक्ति से जाकर पूछता है, आप जिंदा क्यों हो, क्या इतना जीवन के प्रति मोह है आपका? वो कहता है कि मैं अपने लिए जीवन जीवित तो नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूं, ये देह तो सड़ रहा है, मर ही जाएगा, मरा कि मरा, मैं इसलिए यहां आता हूं कि दुनिया वाले देखे कि यही हाल उनका भी एक दिन होगा। ये सिखाने के लिए कैसी देह से आ सकती है। जन्म दुखदाई है, गर्भ जेल है, मरण दुखदाई है, जरा और व्याधि। अस्पताल में गए, सरकारी अस्पताल, जनरल वार्ड, एक चक्कर लगा दिया, दिखाई देगा यह है देह। सारा शरीर जर्जर हुआ है, टीबी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट चिल्लाते रहते हैं रात भर, कोई देखने नहीं आता, रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, बाद में पूछता नहीं कोई। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम का कभी कभी चक्कर जाकर देखो, उसी शहर में वृद्धाश्रम है जिस शहर में बेटे और बेटियां रहते हैं, मां बाप उसी शहर के उसी वृद्धाश्रम में। ये जीवन है और इस जीवन का सत्य है। भगवान विनाश की बातें करता है, परंतु विनाश की बातें हमने इतनी सुनी है कि यहां से सुनी और कहीं वैराग आता ही नहीं। मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, तुम्हारा होलसेल मौत होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, विनाश होना है, गारंटी है। इतनी बार सुना है कि सुना, और आजकल तो विनाश की कहीं कोई चर्चा नहीं, पहले होती थी यज्ञों में। तो सबसे पहला मरण है देह, इस देह से इतनी आसक्ति, खुद की देह से और उसके भी ऊपर है फिर किसी और की देह से। वो यदि पुरुष है तो सारा ज्ञान और योग अब तक जो किया है सब कुछ बह जाएगा। यदि देह से आकर्षण इस देह से मेरा दिनों में रहस्य रहो जैसे तुम यहां हो भी नहीं। बाबा के महावाक्य है, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। लोगों को लगा ये ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा कह रहा है। लोगों को लगा शिव बाबा कह रहा है मैं इस तन में ऐसा रहता हूं जैसे इसमें हो ही नहीं, परंतु वो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा के अनुभव बोल रहे थे। अंतिम अवस्था जैसे इस तन में है ही नहीं, जन्म जन्म शरीर को भोगा है, क्या प्राप्त हुआ? दुख। देह तपस्या के लिए है, साधना के लिए है, भोग के लिए नहीं, ना तो हमारे और किसी और के तो की तो बात ही नहीं। देह पुराना है, सड़ा हुआ यह देह, कहां से इसमें सौंदर्य है? पहला, दूसरा, पुरानी आदतें और संस्कार। संन्यास ले लिया मुनि शांतिनाथ ने, पर क्रोध नहीं छोड़ा, क्रोध दया नहीं। ये कैसा संन्यास? जो संस्कार अज्ञान काल में था वो अब भी चल रहा है। अज्ञान काल में स्वभाव था छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, अब भी चल रहा है। इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद, सुनाने के बाद, सुनना नहीं सुनाना, फिर भी अभी भी कोई कुछ कह दे तो तुरंत नाराज है।
यदि दूसरा हमें कोई बताए कि तुम्हारा ये संस्कार गलत है
तो शायद वो संस्कार रह जाएगा बाजू में, वो तो हम देख लेंगे, अब ये नया शत्रु बन जाएगा एक। तुम कौन हो बताने वाले, तुम में तो वो मंजूर ज्यादा है। सीधा आक्रमण, बेचारा पछताएगा क्यों बता दिया, उससे तो ना बताया होता तो अच्छा होता। दुश्मनी बोली सबसे बेस्ट है, अगर पूछे तो ही बताए। उदाहरण है ब्रह्मा बाबा का, कुछ बहनें ब्रह्मा बाबा के पास आई आंगन में और कहने लगी, बाबा हमको बताओ, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहती है, हम में आपने इतने दिनों से, हम यहां रह रही है 15-20 दिन से, कुछ तो आपने हम में कुछ कमी देखी होगी पुरुषार्थ में, तो वो आप हमको अगर बताओ तो हम उसको ठीक करें। कितना अच्छा प्रस्ताव है, आप हमको बताओ, आपने हमको देखा है, आपको कुछ तो दिखा होगा, कुछ तो गलती कुछ कमी, अगर आप बताएंगे तो हम उस पर काम करेंगे। बाबा ने कहा, बाप बच्चों के किसी गलती को देखता ही नहीं, फिर भी थोड़ा तो बताओ। तो वहां से बाबा गए कुटिया में, वो सारी बहनें बाबा के पीछे कुटिया में पहुंच गई और फिर बोला, कुछ तो बताओ, एक तो पॉइंट बताओ। बाबा ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हारी किसी की गलती देखता ही नहीं, आखिरी तक कुछ भी नहीं बताया। कैसी अवस्था है, कैसा स्वरूप है, कोई पूछ रहा है फिर भी नहीं बता रहे। और इसमें भी राज है, वो न बताने में भी राज है, वो न बताना भी उन्हें कुछ सिखा रहा है कि तुम भी ऐसा करो, यही शिक्षा है। अगला पुराना घर, पुराना घर, जिस घर से आए थे वह घर, जिस घर से आए थे उसकी दाल और रोटी अभी भी याद किस किस को आती है और बहुत अच्छी लगती है, और लगता है कि कब जाए और मां की हाथ, मां के हाथ का कब खाए। कोई भी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा तो होगा कि नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। पुराना घर, जिस गली को छोड़ दिया है उसे छोड़ दिया है। बाइबल में वचन है जीसस के, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही हु लवेथ हिज डॉटर एंड सन मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। वो जो अपने मां बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। वो जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। डिनाय योर मदर एंड डिनाय योर फादर एंड कम टू मी। जो घर छोड़ गया छूट गया, जो परिवार छूट गया वो छूट गया। अब उससे क्या, अब वहां हलचल हो रही है तो क्या हम भी हलचल में आए, वहां कुछ कुछ हो रहा है तो क्या हम भी कुछ कुछ होते रहे, हमें हमारे साथ भी। सेवा करना, कर्तव्य निभाना दूसरी बात है, परंतु आसक्त हो जाना और वहीं पर लगे रहना, वही फोन कॉल्स और वही सब कुछ अभी भी चालू है, और यहां कुछ हलचल हो जाए तो हम जा रही है। धमकी अशोभनीय शब्द है, तो क्या दूसरा शब्द है इसके लिए, सुबह भी बताया था, कट द ब्रिजेस ड्राउन द बोट थ्रो द लैडर्स। तीन चीजें, आर्मी जब यहां से वहां जाती है पुल बांधती है, बीच में खाई, एक बार इधर आ गई पुल को काट देती है, यही नियम है समर्पण का। उस खाई से इस खाई आए और जिस पुल से आए, आने के बाद उस पुल को काट दो ताकि उधर जाने का कोई मार्ग ना रहे। कट द ब्रिजेस ड्राउन द बोट, जिस नाव में बैठ के उस किनारे से इस किनारे आए थे, आने के बाद उस नाव को डुबो दो ताकि उधर जाने का कोई मार्ग ना रहे। वो दुनिया हमारे लिए समाप्त हो चुकी है, जो होगा यहीं पर तेरी गली में। अगर अभी भी ऑप्शन रखा है तो शायद समर्पण समग्र नहीं है, संपूर्ण नहीं, थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचे हो ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक दो, ताकि वापस नीचे उतरने का कोई ख्याल ना हो। और जिनको अभी भी उसी घर की दाल और रोटी खींचती है, एक दिन वहीं पहुंचा देगी जहां से आए थे। परिस्थितियां ऐसी ही निर्माण होगी कि पहुंच वहीं जाओगे जहां से आए थे। आजीवन प्रायश्चित और पश्चाताप, फिर चाहे कुछ भी करो, कितनी भी सेवा करो, उधर उसमें वो सौंदर्य नहीं है जो यहां करके भगवान के यज्ञ में बैठकर वहां जो करना है करो, खोलोगे तपस्या या कुछ करो। इस सीट पर बैठने का अधिकार खो दोगे। जिस घर को छोड़ दिया छोड़ दिया, वहां उन लोगों का जो अब होगा वो उनका कर्म है, उनके कर्मों के साथ स्वयं को नहीं बांध देना। किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, आर्थिक परिस्थितियां, कुछ ना कुछ उधर होगा। यदि हम उनके साथ दुखी होते रहे तो क्या अर्थ है इस समर्पण का? कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, ये नियम है संन्यास का और समर्पण का। पुराना घर, तीसरा, चौथा, पुरानी वस्तुएं, इस संसार की वस्तुएं संग्रह करने की आदत, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी रखो वो भी रखो, ये भी रखो वो भी रखो वो भी रखो, वस्तुओं में मोह। दादी जान की एक बार हॉस्पिटल में आए, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, सबने अपना नाम से दादी को कुछ कुछ लिखा, कोई गिफ्ट, फला भाई फला बहन, बहुत सारे गिफ्ट दिए। शाम को हम गए थे दादी के पास देखने कैंसर हो, वो जो भी सारे गिफ्ट थे शाम को सारे बांटना चालू था। वस्तुएं आएगी और जाएगी, परंतु मोह ऐसा है, एक चम्मच भी यदि गुम हो जाए तो बेचैनी हो जाती है, एक पॉलिथीन नहीं दिख रहा है। हां, ध्यान रखना, केयर करना, संभाल करना, ट्रस्टी होकर रहना अलग बात है, पर उसी को सब कुछ समझकर बेचैनी तो क्या कहेंगे? जैसे वही सब कुछ था। तीन चीजें महत्वपूर्ण है, सभी नोट करके रखो। हमारी स्थिति की कीमत है 1 करोड़, सबसे टॉप। संबंध की कीमत है 1 लाख, और तीसरा है फिर सेवा 1000। यदि कोई व्यक्ति सेवा में गड़बड़ कर दे, कोई हमारा साथी, सेवा तीसरा, सेवा यदि सेवा में गड़बड़ कर दे और हमने उसे बहुत डांट दी, संबंध बिगड़ गया। स्थिति तो बहुत दूर की बात है, स्थिति तो गई गई, पर यदि इसमें से चुनाव करना है, सेवा और संबंध, किसका चुनाव करेंगे? किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया पूरा और हमने उसको बहुत डांटा, तो रिलेशनशिप एक तरफ, दूसरी तरफ सेवा। महत्वपूर्ण क्या है दोनों में से? रिलेशनशिप, सेवाएं तो आ जाएगी, पैसे जो वेस्ट हो गए वो भी आ जाएंगे, पर व्यक्ति नहीं आएगा। शांतिवन में नया नया सेवाधारी एक भाई आया, सुबह का समय था, 4 बजे किचन में पहुंचा, बहुत बड़ा पतीला था जिसमें रात में चीनी की चाशनी किसने बना के रखी थी, कितनी सारी किलो की चीनी होगी, उसको लगा पानी और उसने उड़ेल दिया सारा किसान। और बाद में उसको पता चला ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान, पता नहीं उसमें कितना, बहुत बड़ा जो बड़े बड़े हैं वहां पर, इतना डर गया सारे सीनियर इंचार्ज सबको पता चल गया, बात तो ऐसी फैल गई कि बस वो इतना डर गया, अब तो बस यहां से जाना एकमात्र मार्ग है। नया नया था, घबरा गया एकदम, अब क्या होगा। और फिर जो होना था वही हुआ। दादी कॉटेज से संदेश आया, दादी प्रकाशमणी ने बुलाया है। फिर तो बात बस पूछो, इतना डर गया कि सोचा बस आज शाम की ट्रेन से वापस चला जाता हूं। दादी ने उसको बुलाया, दादी ने बिठाया, दादी ने कहा नाश्ता किया? किया। वो कुछ बोलने को क्या बोलेगा, कुछ निकल ही नहीं रहा मुंह से, क्योंकि बहुत सारे बहुत डरा के रखा था पहले, तुमने ये जो किया बहुत बुरा किया, समझना चाहिए, इतना भी नहीं समझता कि तुमको कहां से आए हो, कौन बहन है, कौन सा सेंटर। दादी ने कहा नाश्ता दिया है? उसने कुछ हाँ ना क्या कहा बताने। फिर दादी ने कहा टोली खाओ, फिर टोली खिलाई, स्लोगन दिया जाओ, बस कुछ खाए नहीं, वो अंदर ही नहीं। अगर उसको डाटा होता ज्ञान ही छोड़कर चला गया होता, नुकसान एक तरफ था परंतु संबंध, नुकसान होगा परंतु हमेशा याद रखना कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, परंतु हम उसे ठुकरा दे, डांट दे, व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति नहीं आएगा, पैसे तो आ जाएंगे वापस, व्यक्ति नहीं आएगा। इसलिए स्थिति फिर संबंध, बाद में सेवा, पैसे, नुकसान, ये सब कुछ। सूरज भाई जी ने एक बार सुनाया था, एक भाई था नया किचन में आया, उसको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता था कुछ। एक बार मेहमान आ रहे थे, खिचड़ी उसको बताया कैसे बनाने, उसने सब गड़बड़ कर दिया, मेहमान सामने है और उसको जो बोला था चावल इतना सा, दाल इतनी सारी, हर एक की बुद्धि हमारे जैसी ही बहुत अच्छी नहीं है, हम जो समझते हैं हमारी बहुत अच्छी है, हर एक की क्षमता अलग अलग है। अगर उसको वहीं डांट दिया होता तो शायद ज्ञान छोड़कर चला गया होता, उसको सेवा बदल कर दे दिया, जिसकी जैसी योग्यता है उसी अनुसार। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करे कोई नई कन्या है, कुमारी है, कि वो सब कुछ सीख ले, क्योंकि हमने वैसा सीखा था, तुम क्यों नहीं सीखती? हम तो आए थे तो फटाफट सब सीख लिया था, तुमको एक दो महीना हो गया अभी तक तो कुछ भी नहीं सीख रही हो। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, हम नहीं कर सकते कि वो भी वैसा ही करे जो हमने किया था, उसको एक काम लग सकता है, तुमने एक मास में सीखा होगा, एक सेवा सीखने के लिए छोटी सी। तो कहां थे हम? पुराना वस्तुएं आएंगी और वस्तुएं जाएगी, और वस्तुओं का नुकसान भी हो जाएगा, पर अगर नुकसान अगर हो जाए, दादी निर्मल शांता किचन में एक बार बहने दूध रखा और बहने कहीं चली गई, वो दूध पूरा उबल कर बाहर आ गया, पूरा नीचे गिर रहा है किचन में पूरा। दादी आई और उसके पीछे बहने आई, बहनों को लगा अब तो हम गए, दादी ने देख लिया अब क्या होगा पता नहीं। दादी ने कहा वाह, सतयुग में ऐसी ही दूध और घी की नदियां बहेगी। थोड़ा उनको शांत लगा, ये तो समझ में आ गया नुकसान तो हुआ है, पर कहने का ढंग ही कुछ और था। जिनको समझना था बहनों ने समझ लिया, अगर डाटा होता इतना भी नहीं समझता, कहां चली गई थी, क्या कर रही थी, तुमको यही सिखाया क्या तुम्हारे मां बाप ने, वगैरह वगैरह। लेक्चर तो हम बहुत दे सकते हैं, इतनी पावर है, पता नहीं इतने सारे शब्द कहां से आ जाते हैं, उस समय हमारी वोकैबुलरी एकदम बढ़ जाती है, फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हैं, भाषण के समय थोड़े कम आते हैं पर किसी को डांटते समय फुल पावर आ जाती है, और डांटने के बाद फिर लगता है हां ये बाबा की अच्छी सेवा कर दी, किसी भूले भटके को राह दिखा दिया। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने तीन स्टेप बताए हैं किसी को करेक्शन देने के, किसी ने गलती कर दी, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बिल्कुल करना नहीं चाहता, एकदम मूर्खतापूर्ण काम किया, फुलिशनेस। पहला, स्वयं सम्मान में स्थित हो जाओ। डांटने से पहले क्या क्या करना है उसकी स्टेप से ही। अभी बस डांटने ही वाले हैं, तलवार का सब निकाली ही है, उसको जो काम बोला था उसने किया ही नहीं, सारा ठीक रखने को कहा था माइक, और माइक ही नहीं चल रहा है टाइम पर, कहां है वो भाई माइक वाला, बस अब तलवार अब निकालने ही वाले हैं, तीन काम करने। पहला, स्वयं समान में स्थित हो जाओ। दूसरा, जो आत्मा सामने है जिसको डांटना है अभी थोड़ी देर में, जिसने बहुत गड़बड़ कर दी, बिल्कुल नहीं स्वीकार है, स्वीकार्य है, उसकी विशेषता की गुणगान करो। यह अव्यक्त मुरली है। पहला, सम्मान में स्थित हो जाओ, दूसरा उसकी विशेषता का गुणगान करो, उसको सम्मान से देखो, और तीसरा फिर उसको करेक्शन दो। बाबा ने बीज और भूमि का उदाहरण दिया, फिर बीज फिर हल चलाओ तो वो शिक्षा और क्षमा साथ साथ। अगर हमने सीधा ही बता दिया, कोई सीधा, कोई माता चप्पल पहन के सीधा इधर स्टेज पर, तो क्या करेंगे, वस्तु आएगी और जाएगी, व्यक्ति नहीं रहे जाएंगे, व्यक्ति तो चला जाएगा, तो चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। अगला, पुराने खान पान की आदत है, जो भी खाए उसमें प्रसन्न चित्त से, दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता से, क्रोध में यदि कोई भोजन स्वीकार करता है तो वो भोजन नॉन वेजिटेरियन फूड है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मांसाहार है, क्योंकि क्रोध में किसी के प्रति घृणा भाव है, ईर्ष्या का भाव है, और उस अवस्था में भोजन स्वीकार कर रहे हैं, वो भी हिंसा है, वो भी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन। प्रसन्न धन्यवाद देते हुए फिर उसे स्वीकार करें। भोग तो अब सब जगह से ही है, परंतु वो विधि भी उसमें भी नवीनता नहीं है, वो एक कार्य मात्र न हो जाए, बस काम करना था कर लिया, हो गया काम पूरा, अब आगे बढ़ो। परंपरा जो चालू है वो चालू है, वो जो बताया था यहां या कहीं और मधुबन में, एक आश्रम था जो महात्मा थे आश्रम के, उनको बिल्ली बहुत प्यारी थी, एक बिल्ली को पालते थे आश्रम में, परंतु जब ध्यान में बैठते थे तो बिल्ली बड़ी सताती थी, कभी यहां चढ़ती थी, कभी कंधे पर, कभी कुछ, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा जब भी मैं ध्यान में बैठूं ये जो बिल्ली है इसको टांग के रखना, बांध के रखना एक झाड़ से, तो वो चालू हो गया। कुछ दिनों के बाद वो महात्मा की वृद्धि हो गई और दूसरा व्यक्ति महात्मा बना, वो बिल्ली तब भी थी, वो बिल्ली सताती थी तो उसको बांधना चालू रखा। उसके बाद में एक दिन बिल्ली मर गई तो दूसरी बिल्ली लाई गई और उसको बांधना चालू किया। फिर उसके बाद में ये महात्मा भी चले गए, तीसरे महात्मा आए, पर बिल्ली को बांधना अभी भी चालू था। और फिर ऐसी कई परंपराएं भी थी, फिर जब भी नए महात्मा ध्यान में बैठते, अगर बिल्ली नहीं है तो खरीद के पहले बिल्ली लाओ और फिर उस बिल्ली को बांधो। ये परंपरा चालू हो गई है, जब भी ध्यान में बैठे बिल्ली बांधनी है। क्यों बांधनी है, क्या बांधनी है, वो थोड़ी सोचता है बाद में कोई। जैसे भक्ति की कितनी असंख्य परंपरा है, कोई सोचता है ये क्यों कर रहे हैं, नहीं वो चल रहा है। साष्टांग दंडवत करो, जब भी भगवान का मूर्ति देखो मंदिर, कुछ ना कुछ तो झुकते तो है, गाड़ी से चलाते चलाते भी हाथ इधर जाता है। परंपरा है चालू, कहीं भोग लगाना ऐसा ही तो नहीं हो गया, टाइम हो गया चलो भोग लगाओ और काम पूरा, चलो अभी आगे। वो जो पुराना खान पान था और वो जो आसक्तियां थी, क्या भी चल रही है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है एक लेक्चर में, भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर रसोई जो है वो मंदिर बन गया है और भोजन भगवान। क्या ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात सारा जीवन किचन और भोजन इसी में बीतता है, या और भी कुछ करना है। अगला मरण, पुरानी दृष्टि,
सुना था किसी ने कहा कि थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसने।
अब नई दृष्टि चाहिए, जैसे हमने अभी अभ्यास किया, हम तो स्थित हो समान में, परंतु दूसरों को भी उसी श्रेष्ठ समान में ले, उसी महान दृष्टि से। यहां तक कि जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं जो कि ज्ञान में नहीं है, उनको भी देखना कि ये देव कुल की ही आत्मा है, ये महान आत्माएं हैं और देव कुल की ही आत्मा है। अपने दृष्टि का ऑपरेशन, दृष्टि को नया बनाना, दृष्टि। अगला, पुरानी जो दृष्टि थी अवगुणों वाली, विकारों वाली, दैहिक, उसको समाप्त करना। अगला, पुरानी इच्छाएं और कामनाएं, तब अज्ञान काल में शायद इच्छा थी कि बहुत पढ़ाई की जाए, बहुत पढ़े लिखे। कल की मुरली में बाबा ने इसका भी वर्णन किया है, कुमारियों ने प्रश्न पूछा डिग्री चाहिए क्या कर, बाबा ने कहा वो डिग्री ले ले और उसका स्वरूप न बने तो क्या फायदा, तुम्हें सबसे बड़ी डिग्री मिली है मास्टर सर्वशक्तिमान। क्या ब्रह्मा कुमारी से बड़ी संसार में कोई डिग्री है क्या? बीए बाबा ने दो डिग्री है, एमए बीए कुछ याद भी किया, एमबीए। दादी प्रकाशमणि अपना अनुभव सुनाती थी, दादी को वो किसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, तो दादी वो कोट पहनकर बहुत खुशी खुशी से बाबा के पास गई, अव्यक्त बाबा थे, अव्यक्त बापदादा के पास, ओम शांति भवन में बाबा को दिखाया, बाबा ये मिला है। तो बाबा ने कहा था बच्ची क्या ब्रह्मा कुमारी से भी बड़ी कोई डिग्री है? संसारिक इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, पद की इच्छा, संसारिक प्राप्तियां करने की इच्छा, वो हो गया जीवन पूरा, अब उधर का नहीं चाहिए कुछ। यहां आ गए मतलब यही सब कुछ है। दो विकल्प थे, संसार और भगवान, भगवान को चुना उसको भूल जाओ, जैसे वो है ही नहीं है। तो पुरानी इच्छाएं और कामनाएं, उसके बाद पुरानी आशा। यहां आप लोग सब हिंदी जानते हैं, परंतु साउथ में यहां पर बहुत सारी जगह पर लोग अपनी वही पुरानी भाषा को पकड़ के रखते हैं, और उस भाषा वाला कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो अपना एक ग्रुप बना लेते, ये मराठी, ये पंजाब, ये कर्नाटक, वो उनके उनके साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा का कहीं वर्णन नहीं है, क्या एक बार बाबा की प्रवेशता हुई उसके बाद में सिंधी का कभी प्रयोग किया, हम लोग देखते हैं मधुबन में तेलुगु में ही मुरली लिख रहे हैं, तमिल में ही लिख रहे हैं। वो भाषा के लिए जो दूसरी भाषा है अपनी लौकिक, उस भाषा से ही अटैचमेंट है। पुराना पुरानी भाषा, पुराना देश। हम भारतीय हैं ये बहुत अच्छी बात है और भारत के प्रति प्रेम है। आपसे प्रश्न है, यदि भारत और पाकिस्तान की मैच हो रही हो तो क्या इच्छा रहती है, अंदर कौन जीते? आप है विश्व कल्याणकारी, अब बताओ। हम किसी देश के नहीं, हम विश्व के लिए हैं। विश्व कल्याणकारी किसी एक देश के कल्याणकारी नहीं है। लोग क्रिकेट देखते हैं, मैचेस देखते हैं और कितने एक्साइट हो जाते हैं। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सोचो, वो जो देख रहे क्रिकेट या कोई, उसी समय यदि अंतिम समय हो जाए तो किसकी याद में शरीर छुटेगा? वो जो दिखाई दे रहे हैं उसमें उनकी याद, तो क्या ये महान स्थिति हुई, यही क्या जीवन? इसलिए ये सब बातें। फिर है पुराने साधन, साधनों में भी डिजिटल साधन, ये एक बहुत बड़ी माया है। एक उदाहरण देते हैं फिर क्लास को पूरा करेंगे। एक व्यक्ति होता है जिसको नींद करता है और रात में एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखता है कि उसके बिस्तर के नीचे सांप, अजगर, भयानक प्राणी चिल्ला रहे हैं, डरा रहे हैं। रोज एक स्वप्न और रोज आंख खुलती है, धड़ 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 धड़, दुखी हो जाता है बेचारा। रोज एक ही स्वप्न डरावना, क्या करूं? बाहर वैसे ही निकलता है। लोग उसको बोलते हैं कि किसी के पास दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। होता है सारे डॉक्टरों को दिखाकर हो गया, सारे साइकेट्रिस्ट हो गया, सारी जांच हो गई, कहीं कुछ नहीं आता, किसी के पास कोई हल नहीं है, क्या करूं? एक सोता है तो एक स्वप्न, बड़े भयंकर प्राणी, अजगर, सांप, मगरमच्छ। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो उठता है और इतना खुश और खुशी खुशी से जाता है। तो सारे गांव वाले पूछते, आज क्या हुआ, क्या वो स्वप्न नहीं आया? वो कहता है, नहीं, स्वप्न आज खत्म हो गया। कैसे? वो कहता है, मेरा एक भाई है दूर का, वो आ गया और उसने हल कर दिया। वो कहता है, उसने क्या किया ऐसा? वो कहता है, वो कारपेंटर था तो जो बेड था, बेड के चारों पांव काट दिए। स्वप्न में तो यही आता था ना कि बिस्तर के नीचे ये सारे राक्षस है, चारों पांव कट गए तो राक्षस आना समाप्त। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये चार है। टीवी, सीरियल्स, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, सीरियल दिखाते हैं, एंड भी वही होता है जैसे आगे क्या होगा, उसकी एक क्लाइमैक्स उत्सुकता रहती है, सस्पेंस। बाबा ने कहा है टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब कोई कहते नहीं, उसमें कुछ कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है, पर सीखने का मिलता तो है, परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, एक घंटे में, एक मिनट में जो नहीं सीखना है वही सीखता है, और जो एक घंटे में जो सीखने तक का था वो छोड़ देता है। वो मधुबन में एक भाई था ना, मैं हमारे हॉस्पिटल में, कहां जा रहे? तो कहता था, अशोक भाई की क्लास सुनने जा रहा हूं। कौन सा अशोक भाई की क्लास? सम्राट अशोक। सीरियल टीवी में आते 9 बजे। मोबाइल दूसरा, दिन रात उसी में लगे और उसी से सारी माया जन्म लेगी। इंटरनेट, क्या देख रहे, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही बैठ रहे, क्लिक कर रहे और कहां से कहां यात्रा चालू है। चौथा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सबसे बड़ी माया। नए नए ग्रुप्स, नए नए संपर्क, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरु यार, गुड मॉर्निंग, सब बेस्ट, सब माया है। जो भेजना है वो खुद के लिए भेजो। किसी ने तो भेजा था हैप्पी श्राद्ध। इस सदी का सबसे बड़ा मजाक ऐसा कहा जाता है कि कंप्यूटर एंड मोबाइल वर इन्वेंटेड टू सेव टाइम। कंप्यूटर और मोबाइल इसलिए बनाए गए थे कि ताकि मनुष्य का समय बचे। ये सबसे बड़ा जोक था इस सदी का। आज वो सबसे बड़ा क्या बन चुका है? टाइम वेस्टेज का साधन। इसलिए पुराने जो डिजिटल साधन है उनसे भी मर जाना। सब जहां जहां सेवा जितनी उससे होती है वहां तक ठीक है, जहां पर कुछ और चालू हो रहा है वेस्ट वहीं स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं किया है तो आज से ठीक है। ओम शांति। रात में क्या करना है अभी तक किसी ने बताया नहीं। हमारे पास टाइम है, कुमारियों की क्लास करनी है, क्या करनी है बहन जी बताएंगे आप लोग। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो हम रात में प्रश्न उत्तर का एक सेशन रख सकते हैं। आप लोग जाने वाले कि आप जाएंगे? अभी कभी जाने वाले? थोड़े देर में बस। ठीक है, तो यहां जो बातें आपने सुनी, जो भी बातें यहां सुनी, समय हमारे पास कम है, फिर भी जितनी बातें सुनी और उसमें से आपको कुछ बातें ठीक लगी तो उसको आपको धारण करना। ओम शांति।